डॉक्टर क्रेग कीनर अधिनियम व्याख्यान 11 अधिनियम 8 2024 क्रेग केनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह अधिनियम 8 पर सत्र 11 है। प्रेरितों के काम अध्याय 7 में स्टीफन यरूशलेम से दूर या यरूशलेम और यहूदिया से परे मिशन के लिए धार्मिक आधार तैयार करता है, लेकिन फिलिप इसे आधिकारिक तौर पर लागू करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अब वास्तव में बहुत सारे लोग थे जो तितर बितर हो गए थे, और हमने अध्याय 11 में पढ़ा था कि उनमें से कई लोग अपने साथ खुशखबरी लेकर जा रहे थे, लेकिन फिलिप वह है जिसने वर्णन किया है। वह 7 में से एक है, हेलेनिस्ट यहूदी ईसाई आंदोलन के नेताओं में से एक है, और इसलिए अध्याय 8 श्लोक 5 से 25 में हम सामरिया के लिए फिलिप के मिशन को देखते हैं, और श्लोक 26 से 40 में एक अफ्रीकी अदालत के अधिकारी के लिए उनका मंत्रालय देखते हैं। हम सामरिया के रूपांतरण 8:5 से 13 से शुरू करेंगे। अध्याय 8 और पद 5 एक सामरी शहर की बात करते हैं। संभवतः यह मुख्य सामरी शहर नेपोलिस का जिक्र कर रहा है जो प्राचीन शेकेम की साइट पर था। संभवतः सामरिया के प्राचीन शहर का स्थल नहीं जो अब सामरी शहर नहीं था। यह मुख्य रूप से यूनानी शहर बन गया था, एक यूनानी शहर के रूप में स्थापित किया गया था, तो संभवतः नेपोलिस प्राचीन शेकेम के स्थल पर है। शकेम जो वास्तव में स्टीफन द्वारा अध्याय 7 छंद 15 और 16 में इसराइल के इतिहास को दोबारा बताने में आता है। खैर, बहुत से लोग विश्वास में आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से उसकी मुलाकात होती है उनमें से एक शमौन जादूगर है। अब अन्य जातियों ने जादू का बहुत प्रयोग किया। यह प्रेम में लोकप्रिय था। आपके पास लोगों को अपने जैसा करने के लिए बहकाने, अपने जीवन साथी को छोड़कर आपके पीछे आने के लिए आकर्षित करने, आपके लिए जुनून से जलने आदि के लिए प्यार का जादू था। इसका उपयोग खेलों में भी किया जाता था, जहां आप जादू का उपयोग करके अपने विरोधियों को शाप देकर मारने और उनके रथों को दुर्घटनाग्रस्त करने आदि की कोशिश करते थे। या यदि आप किसी विशेष टीम के पक्ष में थे तो आप ऐसा करेंगे। इसलिए विशेष रूप से मिस्र में जादू का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। हमारे पास इसके बहुत सारे सबूत हैं, क्योंकि हमारे पास मिस्र से बहुत सारी पपीरी हैं और बहुत सारी जादुई पपीरी हैं। लेकिन यहूदी अभ्यासियों को कभी कभी जादू में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। इस तथ्य के बावजूद कि कुछ यहूदी शिक्षकों ने कहा कि जादू बहुत बुरा है और आपको इसे नहीं करना चाहिए, कई रब्बियों ने कहा, ठीक है, आपको भ्रम के बीच अंतर करना होगा। बस एक तरफ जादू की चालें, या आप आत्माओं राक्षसों के माध्यम से क्या करते हैं, और यह एक अच्छा अंतर हो सकता है। लेकिन भले ही रब्बियों ने जादू की निंदा की, हमने कुछ बाद के रब्बियों को कुछ ऐसा करते हुए देखा जो वास्तव में जादू जैसा दिखता था, एक बछड़े के पिछले हिस्से और उस जैसी चीजों को बनाने के लिए सृष्टि के रहस्यों का उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे। यहूदी लोग जादू के लिए प्रसिद्ध थे। इसका कारण यह था कि जादू अक्सर निचली आत्मा से निपटने के लिए उच्च आत्मा के नाम का आह्वान करके काम करता था, और यहूदी लोग अपने देवता के गुप्त नाम को जानने के लिए जाने जाते थे, क्योंकि यहवे जो हमारे पास वास्तव में था, YHWH अक्षर, हमारे पास इसके साथ जाने के लिए स्वर नहीं थे, और परिणामस्वरूप यह सिर्फ एक परंपरा थी कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता था, क्योंकि यहूदी लोग आम तौर पर सार्वजनिक रूप से पवित्र नाम का उच्चारण नहीं करते थे। उन्होंने उसे यहोवा के बजाय भगवान कहा, अत यह एक गुप्त नाम माना गया, और जादू में कभी कभी लोग उस दिव्य नाम का उच्चारण करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हालांकि कुछ चीजें जिनके बारे में लोगों ने सोचा था कि वे केवल ईश्वरीय नाम का क्रम परिवर्तन थीं, स्वरों का उपयोग जादू के लिए भी किया जाता था। इसलिए कभी कभी लोग अलग अलग स्वरों का उपयोग कर रहे होते हैं। लेकिन किसी भी मामले में जादू के यहूदी अभ्यासी अत्यधिक प्रतिष्ठित थे। आप प्रेरितों के काम अध्याय 13 में एक यहूदी जादूगर, एक यहूदी झूठे भविष्यवक्ता को देखते हैं। आप स्केवा के साथ पुत्रों को देखते हैं जो उझा हैं, लेकिन वे जो कर रहे हैं वह प्राचीन जादू की प्रथाओं के समान है। और आपके पास ऐसे लोग हैं जो यहूदी नहीं थे, जो यहूदी देवता के नाम का उपयोग करने और स्वर्गदूतों आदि का आह्वान करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे भी इस सामरी शहर में साइमन ने जादू के अभ्यास से बहुत बदनामी हासिल की है। अब सेबस्ट पास था। सेबस्ट शायद आज हमारा निकटतम समकक्ष ऑगस्टा जैसा कुछ हो सकता है। सेबस्ट एक यूनानी शहर था जो प्राचीन सामरिया के स्थल पर स्थापित किया गया था, और सेबस्ट का मतलब अगस्त वाला था। इसका नाम सम्राट की उपाधि के नाम पर रखा गया था। और इस यूनानी शहर में हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि वास्तव में कुछ अन्य स्थानों पर भी क्या चल रहा था, लेकिन वहां भी चल रहा था कि कई लोग सभी पुरुष देवताओं को पुरुष देवता के एक प्रकार के संश्लेषण में मिश्रित कर रहे थे, लेकिन एक के साथ दयद सभी महिला देवताओं को एक महिला देवता में बदल दिया गया। जस्टिन शहीद, जो वास्तव में दूसरी शताब्दी में नेपोलिस से था, जिसे आज नोबिलिस कहा जाता है, दूसरी शताब्दी में जस्टिन शहीद, जो सामरी क्षेत्र से एक गैर यहूदी था, हालांकि वह धर्म से सामरी नहीं था। बाद में जब वह एक ईसाई के रूप में लिख रहे थे तब वह ईसाई बन गए। उनका कहना है कि वहां की प्रतिष्ठा, वहां की परंपरा यह थी कि साइमन को पुरुष देवता के अवतार के रूप में चित्रित किया जा रहा था और उसकी पत्नी हेलेना को महिला देवता के अवतार के रूप में चित्रित किया जा रहा था। हम नहीं जानते कि यह परंपरा पहली सदी से चली आ रही है या नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। वह इस बारे में कुछ जानने के लिए सही क्षेत्र से हैं। और इसका कुछ अर्थ होगा क्योंकि इस परिच्छेद में यह कहा गया है कि वह ईश्वर की महान शक्ति होने का दावा करता है। अब याद रखें कि अधिनियमों में ऐसे लोग हैं जो कुछ होने का दावा करते हैं। गेमलियल ने कहा कि थ्यूडास ने कोई होने का दावा किया है। और प्रेरितों के काम अध्याय 12 में हेरोदेस अग्रिप्पा में एक देवता के रूप में पूजा प्राप्त करना चाहता हूं। इसके विपरीत पतरस ने आदर को अस्वीकार कर दिया, प्रेरितों के काम अध्याय 3 और श्लोक 12 में। और प्रेरितों के काम अध्याय 10 में भी पॉल ने आदर को अस्वीकार कर दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 14 में पॉल और बरनबास ने पूजा को अस्वीकार कर दिया है। लेकिन यहां कोई है जो ऊंचा होना चाहता है। लूक के सुसमाचार में यीशु ने क्या कहा? जो कोई अपने आप को ऊंचा उठाना चाहेगा वह नीचा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह ऊंचा किया जाएगा। खैर, सामरी लोगों को फिलिप द्वारा बपतिस्मा दिया जाता है। उनका खतना पहले ही हो चुका था, इसलिए यह मुद्दा कि आपको उनका खतना करना है या नहीं उस तरह से नहीं उठेगा जैसा बाद में अन्य जातियों के साथ सामने आ सकता है। लेकिन सामरी लोग, यदि वे यहूदी धर्म में परिवर्तित हो जाते तो केवल बपतिस्मा के द्वारा ही यहूदी धर्म में परिवर्तित हो जाते, क्योंकि वे किसी का दोबारा खतना नहीं करते थे जब तक कि वे खतनारहित न हो जाएं, जिसके लिए वास्तव में उस समय एक चिकित्सा प्रक्रिया थी। कुछ यहूदी लोग जो मैकाबीन युग में बहुत यूनानी बन गए थे और दौड़ में भाग लेना चाहते थे, यूनानियों द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया क्योंकि उनका खतना किया गया था। उन्होंने अपनी चमड़ी को आगे खींचने का एक तरीका ढूंढ लिया और ऐसा दिखाया जैसे कि वे खतनारहित थे। लेकिन मुझे ऐसे लोगों के किसी भी मामले की जानकारी नहीं है जिनका खतना हुआ और फिर खतना नहीं हुआ और फिर दोबारा खतना हुआ। लेकिन किसी भी मामले में एक सामरी का यहूदी धर्म में रूपांतरण एक सामरी के रूप में उनकी पहचान को नकारने के समान देखा गया था। इसे अपने लोगों के प्रति गद्दारी के रूप में देखा गया। फिलिप जैसे यहूदी के लिए सामरी लोगों को यहूदी मसीहा का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करना भी यहूदी धर्म के साथ विश्वासघात जैसा ही माना जाएगा, क्योंकि अरे यह हमारा मसीहा है और आपको इन लोगों का इतनी सहजता से स्वागत नहीं करना चाहिए। लेकिन यह विकेंद्रीकृत गवाही के धार्मिक कार्यक्रम का अनुसरण करता है जिस पर अध्याय 7 में तर्क दिया गया था और यीशु द्वारा अध्याय 1 और श्लोक 8 और अध्याय 8 और श्लोक 13 में प्रचारित किया गया था। यहाँ हम एक शक्ति मुठभेड़ देखते हैं। बुतपरस्त जादूगर कभी कभी भगवान के कुछ संकेतों की नकल कर सकते हैं। आप निर्गमन अध्याय 7 और श्लोक 11, श्लोक 22, अध्याय 8 और श्लोक 7 में देखते हैं। लेकिन एक सीमा थी। आप निर्गमन अध्याय 8 श्लोक 18 और 19 तक पहुंचते हैं। फिरौन के जादूगर कभी भी उस पैमाने की नकल करने में सक्षम नहीं थे जिस पर परमेश्वर काम कर रहा था। मेरा मतलब है, भगवान ब्रह्मांड का मालिक है। ईश्वर प्रकृति में कार्य करता है। आप कभी भी दूसरे ब्रह्मांड या उसके जैसा कुछ बनाने के उस पैमाने की नकल नहीं कर पाएंगे। लेकिन वे मुद्दे पर पहुंचते हैं, निर्गमन 8:18 और 19 और फिर आगे अध्याय 9 और श्लोक 11 में, जहां वो सब नहीं कर सकते जो मूसा कर रहा था। और वास्तव में वे पहचानते हैं कि यह भगवान की उंगली है। दिलचस्प बात यह है कि ल्यूक अध्याय 11 में, जहां यीशु राक्षसों को बाहर निकालने के बारे में बात करते हैं, यीशु कहते हैं, अगर मैं भगवान की उंगली से राक्षसों को निकाल रहा हूं, तो भगवान का राज्य तुम्हारे पास आ गया है, तुम्हारे बीच में आ गया है। आज दुनिया में कई जगहों पर जादूगरों का धर्म परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि वे देखते हैं कि भगवान की शक्ति वास्तव में अधिक है। मेरे किसी जानने वाले ने, जिसने एसबरी सेमिनरी से DMIN के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसने मुझे कुछ तस्वीरें और कुछ रिपोर्टें भेजी हैं कि कैसे कभी कभी एक वर्ष में उनके पास जादू टोने के 20 चिकित्सक होंगे जो खुले तौर पर दावा करते हैं कि वे यही करते हैं, केवल एक खंड में परिवर्तित और बपतिस्मा लेते हैं। इंडोनेशिया का, जहां से वह है, और हमारे पास अफ्रीका के कई हिस्सों और अन्य जगहों से ऐसी रिपोर्टें हैं। दक्षिणी अफ्रीका से एक रिपोर्ट में एक काला दक्षिण अफ्रीकी प्रचारक, मेरा मानना है कि जुलस से, उपदेश दे रहा था, और वहां एक जादूटोना करने वाला डॉक्टर था जो श्राप और इस तरह की चीजें फेंकता था। लेकिन वह जानने को उत्सुक था कि क्या हो रहा है, और वह भीड़ में शामिल हो गया और उसने ये सभी आकर्षण अपने बालों में गुंथे हुए थे। खैर, पवित्र आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह बेहोश हो गया। वह मुंह के बल गिर पड़ा, और जब उसे होश आया तो उसके सारे बाल झड़ चुके थे। वह ईसाई बन गया और खुद को ईसा मसीह के प्रति समर्पित कर दिया। मुझे यकीन है कि उसके बाल वापस उग आए। लेकिन किसी भी मामले में आज दुनिया भर में कई शक्ति मुठभेड़ हो रही हैं, और मैंने उनमें से कुछ को सबसे सुखद तरीकों से अनुभव किया है, लेकिन भगवान की जीत देखी है। भगवान की शक्ति दुष्ट की शक्ति से बेहतर है, और कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में इसमें प्रवेश करने की अधिक संभावना होती है। मुझे उन स्थितियों में जाना पसंद नहीं है, लेकिन भगवान विजयी है। खैर, श्लोक 14-25 में, इस कथा के शेष भाग में, हम सामरी रूपांतरणों के प्रेरितिक अनुस्मर्थन के बारे में सीखते हैं। अब मैंने पहले उल्लेख किया था, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के बारे में वर्तमान बहस के बारे में बात करते हुए, कि धार्मिक रूप से आत्मा का कार्य एक पैकेज है। आप इसे 238 और 239 में देखते हैं। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि 238 और 239 में आपके पास जो है वह यह है कि पश्चाताप करना और बपतिस्मा लेना पूर्व शर्त है और जरूरी नहीं कि आत्मा का उपहार तुरंत मिले। लेकिन मुझे लगता है कि यह शायद उससे थोड़ा अधिक गड़बड़ है। मेरा एक मित्र है डैनी मैककेन जो नाइजीरिया में पढ़ाता है और मैं 3 ग्रीष्मकाल तक वहां पढ़ाने में उनके साथ शामिल हुआ, लेकिन वह दशकों से वहां हैं। डैनी इस बारे में बात करते हैं कि वह कक्षा के सदस्यों को अधिनियम की पुस्तक में विभिन्न अनुच्छेद कैसे आवंटित करेंगे और वह कहेगा, अच्छा, प्रेरितों के काम की पुस्तक में आत्मा को प्राप्त करना कैसा दिखता है। उनके पास जो अंश है उसके आधार पर आप पहले बपतिस्मा लेते हैं, फिर आप आत्मा प्राप्त करते हैं, या आप आत्मा प्राप्त करते हैं और फिर आप बपतिस्मा लेते हैं। उनमें से कुछ असाधारण हो सकते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि ईश्वर संप्रभु है। ईश्वर इसे केवल एक तरीके से करने तक ही सीमित नहीं है। एक आदर्श पैटर्न हो सकता है, लेकिन भगवान को भगवान ही रहने दें। किसी भी मामले में सिद्धांत रूप में हम रूपांतरण के समय आत्मा को प्राप्त करते हैं, लेकिन अनुभवात्मक रूप से हम जरूरी नहीं कि इसके सभी पहलुओं को एक साथ अनुभव करें। विद्वानों ने विभिन्न तरीकों से इस पर विचार किया है। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, सामरी लोग वास्तव में अभी तक परिवर्तित नहीं हुए थे। अधिनियम टिप्पणीकारों के बीच यह एक निश्चित अल्पसंख्यक दृष्टिकोण है। अधिकांश अधिनियमों के टिप्पणीकार मानते हैं कि वे परिवर्तित हो गए थे, लेकिन कम से कम आत्मा के कार्य के इस पहलू का उन्होंने अभी तक अनुभव नहीं किया था। मुझे लगता है कि केल्विन ने कहा था कि उन्होंने अभी तक आत्मा के बाहरी संकेतों का अनुभव नहीं किया है। आप इसे जिस भी रूप में लें, कुछ ऐसा है जो प्रेरितों को लगा कि उन्हें इसकी आवश्यकता है जो उनके पास अभी तक नहीं है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि सामरियों को भी उपहार मिला और यरूशलेम चर्च इसे मान्यता देता है और अनुमोदन करता है, या कम से कम उनके नेता ऐसा करते हैं। पीटर और जॉन यही चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें आत्मा प्राप्त हो। ल्यूक के जोर के अनुसार अधिनियम 1:08 आत्मा गवाही के लिए शक्ति है। इस प्रकार सामरी लोग मिशन में भागीदार बन जाते हैं। अब यह वह नहीं है जिसकी यहूदी लोग आमतौर पर अपेक्षा करते थे। अधिकांश यहूदी लोग जब वे गलील से यरूशलेम जा रहे थे, यदि वे पतरस और यूहन्ना की तरह गलीलवासी होते तो वे सामरिया से होकर यात्रा करते। यह 3 दिन की यात्रा थी। यदि आप गोल चक्कर का रास्ता अपनाते तो यह अधिक लंबा होता। कुछ लोगों ने ऐसा किया, लेकिन अधिकांश यहूदी लोगों ने सामरिया से होकर यात्रा की। जब वे यरूशलेम जा रहे थे तो सामरी लोग कभी कभी उनका मजाक उड़ाते थे। यह कहानी उस सामरी के बारे में है जो कह रहा था, तुम यरूशलेम को क्यों जाते हो? गेरिजिम पर्वत हमारा पवित्र पर्वत सियोन पर्वत से ऊंचा है। वास्तव में यह एकमात्र पर्वत है जो बाढ़ के दौरान ढका नहीं गया था। रब्बी को नहीं पता था कि उसे क्या कहना है, लेकिन रब्बी का सहायक जो उसका गधा चालक था जिस पर रब्बी सवार था ने कहा, ठीक है, तोरा के अनुसार केवल अरारत के पहाड़ ही डूबे हुए नहीं थे। सामरी शर्मिंदा हुआ और उसके बाद कहानी के अनुसार रब्बी अपने गधे से उतर गया और उसके बजाय अपने गधे चालक को उस पर सवारी करने दी, क्योंकि वह धर्मशास्त्र में बहुत निपुण था। परंतु लूका अध्याय 9 में ऐसा हुआ था जहां वे सामरिया से होकर जा रहे थे और सामरी लोग इस बात से बहुत अप्रसन्न थे कि वे यरूशलेम की ओर जा रहे थे। और पीटर और जॉन, क्षमा करें, पीटर और जॉन नहीं, जॉन और जेम्स सामरियों पर स्वर्ग से आग बुलाना चाहते थे। वे एलियाह की तरह व्यवहार करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वास्तव में ईश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर को सचमुच सामरियों की परवाह थी। तो जॉन इस समय एक बहुत ही अलग भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आप लूका अध्याय 17 में भी चीजों को उस ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं, जहां यीशु ने कई कोढ़ियों को ठीक किया और एकमात्र व्यक्ति जो धन्यवाद देने के लिए वापस आता है वह एक सामरी है और यीशु उसकी सराहना करता है। तो वे कुछ चीजें सीख रहे थे और निःसंदेह हम जॉन अध्याय 4 से जानते हैं कि वहां उनका अन्य व्यवहार भी था। परंतु किसी भी मामले में यह एक उल्लेखनीय बात है कि वे चाहते हैं कि सामरी लोग आत्मा प्राप्त करें। यह निश्चित रूप से गैलिलियों के लिए एक बदलाव है। यह एक संक्रमण है। वे अभी तक अन्य जातियों तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अध्याय 8 और पद 17। हमारे पास प्रार्थना के लिए हाथ रखने के कुछ दुर्लभ यहूदी उदाहरण हैं। बेशक पुराने नियम में आशीर्वाद और प्रार्थना प्रदान करने के लिए हाथ रखे गए थे। हमने अध्याय 6 में आत्मा के आगमन मंत्रालय के लिए हाथ रखे जाने और उसके लिए पुराने नियम की पृष्ठभूमि के बारे में बात की। लेकिन आम तौर पर प्रार्थना के लिए हाथ फैलाना इतना आम नहीं था। परंतु यहाँ पतरस और यूहन्ना, जिन्होंने पहले फिलिप समेत सातों पर हाथ डाला था, अब सामरियों पर हाथ रख रहे हैं। लक्ष्य अपने लिए शक्ति रखना या अपने लिए ज्ञान रखना उस मामले के लिए या कुछ और नहीं है। लक्ष्य इसे प्रसारित करना है, इसे जितना संभव हो उतना बढ़ाना है, ताकि हमारे पास यथासंभव अधिक से अधिक सहकर्मी हो। फसल बढ़िया है, मजदूर कम हैं। आइए इसे गुणा करने का प्रयास करें। अध्याय 8 श्लोक 18 से 24 तक। खैर, जादूगर संकेत दिखाते हैं और शमौन कुछ ऐसा देखता है जिससे उसे पता चलता है कि लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो गई है। यह क्या रहा होगा? इस पर अलग अलग विचार। क्या यह शायद कुछ ऐसा था जब स्टीफन 6:15 में एक देवदूत की तरह दिखता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जीव हैं क्योंकि भाषाएं कहीं और दिखाई देती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ल्यूक का अंतर सांस्कृतिक संचार पर इतना अधिक जोर है कि यदि वह निश्चित रूप से जानता कि यह इस अवसर पर हुआ है, तो उसे अन्य भाषाओं का वर्णन करना अच्छा लगेगा। इसलिए मैं यह सोचने में प्रवृत्त हूँ कि शायद यह भाषाएं नहीं थीं, लेकिन संभवतः उन लोगों का बहुसंख्यक दृष्टिकोण यही है जो इसे किसी भी चीज तक सीमित करने की कोशिश करते हैं। जेम्स डीजी डन का मानना है कि यह संभवतः अन्य भाषाएं थीं। ल्यूक एक्स के अनुसार यह किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी हो सकती थी, हालांकि ल्यूक ने फिर से इसका उल्लेख किया होगा यदि वह वास्तव में जानता था कि यह क्या था। हो सकता है कि उसके पास इस अवसर का विवरण न हो, लेकिन जो कुछ भी था यह कुछ ऐसा था जिसे साइमन ने देखा। उसने देखा और उसने कहा, मुझे वही शक्ति चाहिए जो इन प्रेरितों के पास है, क्योंकि वाह, यह वास्तव में नाटकीय है। खैर, जादूगर जादुई सूत्र खरीदने के आदी थे और इसलिए अब वह पवित्र आत्मा प्रदान करने के लिए इस शक्ति को खरीदना चाहता है। परंतु आत्मा को कोई नहीं खरीद सका। यह भगवान का उपहार है और दुनिया में ऐसा कोई पैसा नहीं है जो भगवान के उपहार को योग्य रूप से प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो। हमें बस इसे ईश्वर का उपहार मानकर स्वीकार करना होगा। हम सभी के पास एक जैसे उपहार नहीं हैं। यदि ईश्वर हमें और अधिक उपहार देना चाहता है, तो हमें बस अपने पास मौजूद उपहारों के प्रति वफादार रहना होगा और खुले दिल से काम करना होगा। लेकिन साइमन ने गलत तरीका अपनाया और दूसरा शमौन पतरस कहता है, तू और तेरा धन तेरे साथ नाश हो जाएं। इसलिए साइमन ने उनसे उसके लिए प्रार्थना करने को कहा। तो यह कुछ हद तक सकारात्मक नोट पर समाप्त होता है। कम से कम साइमन को एहसास है कि वह मुसीबत में है और वह चाहता है कि वे उसके लिए प्रार्थना करें। और वह इस प्रार्थना को करने के उनके अधिकार को स्वीकार करता है। यह नहीं कहता कि उसने अपने लिए पश्चाताप किया। और बाद की परंपरा के अनुसार उन्होंने ऐसा नहीं किया। बस एक शहीद और अन्य। हालांकि आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि बाद के चर्च जब वे अपने समय के झूठे भविष्यवक्ताओं से निपट रहे थे तो इससे उन्हें मदद मिली अगर उनके पास कोई होता जिससे वे उन्हें नए नियम में जोड़ सकते। और उनमें से कुछ झूठे भविष्यवक्ता वास्तव में नए नियम में कुछ प्राथमिकता चाहते थे जो सार्वजनिक प्रेरितिक परंपरा से अलग थी। इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि उसने ऐतिहासिक रूप से पश्चाताप किया या नहीं, लेकिन ल्यूक ने इसे काफी सकारात्मक नोट पर समाप्त किया जहां कम से कम उसे ऐसा करने का अवसर मिला। अध्याय 8 में श्लोक 26 से 40 एक अफ्रीकी अधिकारी के रूपांतरण की ओर बढ़ता है। वैसे फिलिप एक अग्रदूत के रूप में कार्य करता है, शायद उसी तरह नहीं जैसे जॉन द बैप्टिस्ट यीशु के लिए करता है, लेकिन स्कॉट स्पेंसर ने बताया है कि फिलिप अक्सर अधिनियमों की पुस्तक में पीटर के लिए अग्रदूत के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह फिलिप ही है जो सबसे पहले सामरी लोगों को उपदेश देता है। खैर, जैसे पीटर और जॉन घर वापस जा रहे हैं, वे सामरियों को भी उपदेश देते हैं। उन्होंने उस चीज से सीखा है जो फिलिप ने उनसे पहले किया था, और उन्हें ऐसा करने पर बहुत गर्व नहीं था, और वे सामरियों के गांवों में प्रचार कर सकते थे। हेलेनिस्ट होने के कारण फिलिप संभवतः केवल ग्रीक ही बोल सकते थे। वह प्रमुख शहर में बोल सकता था। वहां बहुत से सामरी यूनानी भाषा बोलते थे, लेकिन आसपास के गांवों में वे केवल अरामी भाषा बोलते थे। तो पीटर और जॉन गांवों में उस तरह से प्रचार कर सकते हैं जिस तरह फिलिप नहीं कर सका, जब तक कि वह उनके साथ न हो और वे उसके लिए अनुवाद कर रहे हों, और इसके उलट होने की संभावना अधिक हो सकती थी। लेकिन किसी भी मामले में श्लोक 26 से 40 तक आते हुए हम एक अफ्रीकी अधिकारी के रूपांतरण के बारे में सीखते हैं, और यह महत्वपूर्ण है। यह पहला पूर्णतः गैर यहूदी धर्मांतरित व्यक्ति है। कंदका का कोषाध्यक्ष है। कथा इस बात पर जोर देती रहती है कि वह एक किन्नर है, तो इसका मतलब संभवतः इसका शाब्दिक अर्थ है, न कि केवल एक अधिकारी के रूप में। दरअसल प्राचीन काल में कई अधिकारी हिजड़े होते थे। रानियों के पुरुष नौकर अक्सर किन्नर होते थे, और वह एक रानी का नौकर है। अब रोमन जगत में इसका तिरस्कार किया जाता था। लोग किन्नरों को हे दृष्टि से देखते थे। वे उन्हें मानते थे, वे उन्हें अक्सर आधा आदमी कहते थे। यह समझा गया कि कभी कभी लोग कुछ चीजों की कमी के साथ पैदा होते हैं, लेकिन विशेष रूप से तब जब अधिकांश हिजड़े ऐसे लोग थे जिन्हें मानवीय तरीके से हिजड़ा बनाया गया था। ऐसा कभी कभी उन नौकरों के लिए किया जाता था जो पुरुष होते थे, ताकि वे सामान्य तरीके से युवावस्था में प्रवेश न कर सकें और पुरुष स्वामियों द्वारा उनका यौन शोषण जारी रखा जा सके। लेकिन विशेष रूप से यह दुनिया के उन हिस्सों के लोगों से जुड़ा था जहां ऐसा किया जाता था, जैसे पार्थिया। खैर, व्यवस्था विवरण 23.1 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वस्तुतः नपुंसक था तो यह व्यक्ति धर्मांतरण नहीं कर सकता था। वे इसराइल के समुदाय में सम्मिलित नहीं हो सके। वे ईश्वर भयभीत हो सकते हैं, और यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से है। मेरा मतलब है वह पवित्र शास्त्र से पढ़ रहा है। वह यरूशलेम गया है क्योंकि वह परमेश्वर से डरता है, लेकिन उसे वास्तव में पूर्ण धर्मांतरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और वह पहले पूर्णतः अन्य जाति ईसाई हैं। पहला पूर्णतः गैर यहूदी ईसाई अफ्रीका से है। बाद में, क्योंकि आज लोग उन्हें इथियोपियाई नपुंसक कहते हैं और कभी कभी हम इथियोपिया के वर्तमान राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। और इथियोपिया राष्ट्र का एक अद्भुत ईसाई इतिहास है। वास्तव में उन्हें वर्ष 333 के आसपास सम्राट कुछ सीरियाई ईसाइयों की गवाही के माध्यम से परिवर्तित किया गया था पूर्वी अफ्रीका में, जो अब इथियोपिया है। अपेक्षाकृत नए साम्राज्य अक्सुम के सम्राट इजानस ने ईसाई धर्म अपना लिया। इथियोपिया के अधिकांश लोग उसके साथ परिवर्तित हो गए। यह दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां शुरू में शहीदों के बिना ही सुसमाचार फैला। लेकिन शायद यह अदालत अधिकारी उस देश से नहीं है जिसे आज हम इथियोपिया कहते हैं। उस समय इथियोपिया का व्यापक अर्थ था, और कंदका के उल्लेख से हमें पता चलता है कि वह वास्तव में नेरो के न्यूबियन साम्राज्य से था, जो अक्सुम के अस्तित्व में आने से पहले अस्तित्व में था और वास्तव में लगभग 750 ईसा पूर्व का है। खैर, हम कैसे जानते हैं कि यह रूपांतरण ल्यूक की कथा के संदर्भ में इतना महत्वपूर्ण है? उन्होंने अध्याय 6 में पहले ही एक धर्मांतरित व्यक्ति का उल्लेख किया है। अध्याय 8 के पहले भाग में हमारे पास सामरी लोग हैं। अध्याय 10 में कुर्नेलियुस स्पष्ट रूप से एक अन्य जाति है, और कुछ लोग कहते हैं ठीक है, वह पहला धर्मांतरित है। वह वास्तव में पहला सार्वजनिक गैर यहूदी धर्मांतरित है। वह वही है जिसके बारे में जेरूसलम चर्च जानता है। लेकिन आम तौर पर और व्यापक रूप से ज्ञात होने वाली चीजों से पहले भी कुछ चीजें घटित हो रही थीं। तो यह पहला गैर यहूदी धर्मांतरित है। फिलिप, याद रखें, प्रेरितों के काम अध्याय 21 में ल्यूक सहित पॉल और उसके साथियों ने फिलिप के घर में समय बिताया था। खैर, जब फिलिप और पॉल एक साथ होंगे तो वे किस बारे में बात कर रहे होंगे? संभवतः वे जिन चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे उनमें से एक पुराने समय की होगी, जब शायद पॉल अभी भी उत्पीड़क था और उसने चर्च को तितर बितर कर दिया था। और फिर जब फिलिप बाहर गया तो उसने क्या किया? और ल्यूक शायद फिलिप के साथ बाद में कैसरिया में भी रहा होगा जब पॉल 2 साल तक रोमन हिरासत में था। लेकिन निश्चित रूप से उसे फिलिप से बात करने के अन्य अवसर मिले होंगे जिनसे वह पहले ही मिल चुका था। खैर, उसने यह कहानी सुनी होगी, लेकिन यह एक ऐसी कहानी हो सकती है जो केवल फिलिप को पता हो। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि फिलिप कैसरिया गया था। वह यरूशलेम वापस नहीं गया। तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है जहां से बात आवश्यक रूप से जेरूसलम चर्च तक वापस पहुंची हो। सामरिया में रूपांतरण के विपरीत उसे यरूशलेम चर्च में वापस जाना होगा। आपके पास आगे पीछे जाने वाले यात्री थे, तो बात काफी जल्दी वहां पहुंच गई होगी। यहां एक संदेश है जिसे ल्यूक निस्संदेह पुराने नियम के प्रकाश में जोर देना बहुत आदर्श मानता है। यशाया अध्याय 56 श्लोक 3-5 तक हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं विदेशियों और किन्नरों का स्वागत करता है। खैर, यहां एक लड़का है जिसके पास ये दोनों हैं। यह उस अंश का संदर्भ है जिसे ल्यूक ने पहले उद्धृत किया था, जहां यीशु यशाया 56 से उद्धृत करते हैं और कहते हैं इस घर को प्रार्थना का घर कहा जाना चाहिए। प्रसंग सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर है। इसके अलावा पुराने नियम में एक इथियोपियाई किन्नर भी है जो यिर्मयाह के कुछ सहयोगियों में से एक बन जाता है और उसकी जान बचाता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में उसे कुर्नेलियुस जितना अधिक स्थान नहीं मिलता। प्रेरितों के काम की पुस्तक में कॉर्नेलियस की कहानी 3 बार दोहराई गई है, लेकिन ऐसा उस कहानी में पीटर की भूमिका के कारण है। कुर्नेलियुस पहला आधिकारिक धर्मांतरित व्यक्ति था। उस कहानी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक सिर्फ कॉर्नेलियस का रूपांतरण नहीं था, बल्कि जेरूसलम चर्च का रूपांतरण क्या हो सकता है के बारे में उनकी सोच में बदलाव था। अब वे इसे एक मिसाल के बजाय एक अपवाद के रूप में मान रहे थे, जब तक कि आप प्रेरितों के काम अध्याय 15 तक नहीं पहुंच जाते, जब पीटर सुन रहा था कि पॉल के मंत्रालय के माध्यम से क्या हो रहा है और उसे एक मिसाल के रूप में उद्धृत करता है। लेकिन कुरनेलियुस का यह रूपांतरण पहला गैर यहूदी ईसाई नहीं था। यह अफ्रीकी अदालत का अधिकारी पहला गैर यहूदी ईसाई था। अब ल्यूक अपने दर्शकों के साम्राज्य के केंद्र में पश्चिम में चर्च के मिशन का पता लगाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे पृथ्वी के बाकी छोर तक सुसमाचार जाने की परवाह नहीं है, और वह यहां पृथ्वी के दक्षिणी छोर तक जाकर इसका वर्णन करता है। और आप जानते हैं, क्योंकि वह इसे पृथ्वी के छोर तक जाने की परवाह करता है, जिसमें पूर्व और उत्तर भी शामिल होंगे, इसलिए इसे सामरी पुरुद्धार जितना ही स्थान दिया गया है। और यह हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों तक पहुंचने के संदर्भ में भी हमें कुछ महत्वपूर्ण दिखा सकता है। इनमें से कुछ आगंतुक ऐसी जगहों से हैं जहां के लोगों तक उनके अपने संदर्भ में पहुंचना बहुत कठिन होगा, लेकिन अगर वे ऐसे शहरों में आते हैं जहां हम सेवा करने में सक्षम हैं और जहां सेवा करने की अधिक स्वतंत्रता है, तो हर तरह से हमें उन तक पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि यह बहुत दुखद है कि कुछ देशों में जहां सुसमाचार का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, वहां ऐसे लोग हैं जो वंचितों तक पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और परमेश्वर अक्सर उन लोगों को भेजता है जो उनके पास नहीं पहुंचे हैं। हमारे कई शहरों में संस्कृतियों का मिश्रण मात्र है। हमें लोगों तक पहुंचने में सक्रिय रहने की जरूरत है। मेरा मतलब है, यह उनकी पसंद है कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन हमें निश्चित रूप से उनसे प्यार करने और उनके साथ साझा करने की जरूरत है। और इस मामले में ईश्वर निश्चित रूप से घटनाओं का आयोजन करता है। ए 26 में फिलिप को संभवतः दक्षिण या संभवतः ग्रीक शब्द का अर्थ दोपहर को जाने के लिए कहा गया है। वास्तव में इसका अनुवाद किसी भी तरह से किया जा सकता है। यदि दोपहर का समय है, यदि उसे दोपहर के समय भेजा जा रहा है, तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आम तौर पर दोपहर के समय एक व्यक्ति अक्सर एक या दो घंटे के लिए छाया में रहता है। यदि संभव हो तो चरवाहे अपने झुंडों को पेड़ों की छाया में ले जाएंगे। बड़ी लोग चाहे जो भी काम कर रहे हों, वे दोपहर के समय काम बंद कर देते थे और हल्का भोजन करते थे या थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते थे और सो जाते थे। लेकिन अधिक संभावना यह है कि इस शब्द का अर्थ दक्षिण की ओर जाना है, जो दिलचस्प भी है, क्योंकि यह दक्षिण की सड़क है, उन्होंने कहा, गाजा की ओर। खैर, वह इस सड़क पर क्या पाने की उम्मीद कर रहा है, खासकर तब जब यह स्पष्ट रूप से एक सुनसान सड़क है, या तो एक सुनसान सड़क है या पुराने गाजा, निर्जन गाजा की ओर जा रही है। यरूशलेम के पास से दो प्रमुख सड़कें थीं जो दक्षिण की ओर जाती थीं। एक हेब्रोन से होकर इदुमिया या एदोम तक जाता था, दूसरा तट से सटा हुआ था। दूसरा दक्षिण की ओर गया, लेकिन फिर गाजा पहुंचने से पहले तटीय सड़क से जुड़ गया और मिस्र की ओर बढ़ गया। तो यह निर्दिष्ट करता है कि उसे कौन सी सड़क अपनानी है। और पुरातात्विक रूप से हमारे पास सड़क चिन्हकों के रूप में रोमन मील के पत्थर हैं जो दिखाते हैं कि ये सड़कें कहाँ थीं। लेकिन वह किसी सुनसान चीज की बात करता है, या तो एक सुनसान सड़क या अधिक संभावना है कि सुनसान गाजा, पुराना गाजा और नया गाजा था। शहर का पुनर्निर्माण किया गया था। पुराना गाजा सांस्कृतिक रूप से ग्रीक अश्कलोन, ओल्ड टेस्टामेंट अश्कलोन और नए गाजा के पास एक निर्जन शहर था। सामरिया में पुरुद्धार के बाद, जहां आप नहीं जानते कि क्या होने वाला है, वहां चलते रहने की आज्ञा अवश्य ही बेतुकी प्रतीत होगी। हालांकि आप अब्राहम को बाहर भेजे जाने या पुराने नियम की अन्य चीजों के बारे में सोच सकते हैं। यह बेतुका प्रतीत होना चाहिए। भगवान अक्सर बेतुके आदेशों के माध्यम से अपने सेवकों के विश्वास की परीक्षा लेते हैं। मूसा अपने लोगों का नेतृत्व करता है। वे यमसुफ समुद्र तक आए और उससे कहा गया कि वह अपनी छड़ी में हाथ बढ़ाकर समुद्र को विभाजित कर दे। यह एक बेतुका आदेश जैसा लगता है। एक राजा 17 एलियाह ने सारपत की एक विधवा से कहा, अच्छा पहले तू मेरे लिए भोजन तैयार कर। उसने कहा, बस बहुत हो गया, मैं इसे अपने और अपने बेटे के लिए तैयार करने जा रहा था। तब हम मरने वाले थे, लेकिन वह आगे बढ़कर इसका पालन करती है। 2 राजा अध्याय 5। एलियाह के नौकर ने नामान को बताया कि उसे जॉर्डन नदी में जाकर डुबकी लगानी है। वह कहता है, क्या दमिश्क की नदियां अबाना और परपर इससे अच्छी नहीं हैं? वह नाराज है क्योंकि वह चाहता था कि एलियाह कुष्ठ रोग या किसी और चीज पर अपना हाथ लहराए, लेकिन उसके नौकर ऐसे हैं जो बहुत घमंडी नहीं हैं और कहते हैं, देखो अगर उसने तुमसे कोई बड़ा काम करने को कहा होता तो क्या तुम न करते। इसलिए वे उसे इस बेतुके आदेश का पालन करने के लिए मनाते हैं और वह शुद्ध हो गया, वह चंगा हो गया। खैर, इसी तरह फिलिप को भी काफी बेतुका आदेश दिया गया है। परंतु जब परमेश्वर हमें कोई आज्ञा देता है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। 8:27 इथियोपिया शाब्दिक रूप से ग्रीक इथियोपिया है। इथियोपिया पूरे अफ्रीका मिस्र के दक्षिण के लिए एक यूनानी शब्द था। यह सिर्फ वही नहीं था जिसे हम आज इथियोपिया कहते हैं, हालांकि अगर उन्होंने इसके बारे में सोचा होता तो उसे भी शामिल किया गया होता। भूमध्य सागरीय किंवदंतियों ने इथियोपिया को पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर रखा और इथियोपिया के बारे में कई मिथक थे। मेमन, जो एक शक्तिशाली और बहादुर योद्धा था, भोर की देवी योस का पुत्र था, या एंड्रोमेडा, जो एक इथियोपियाई राजकुमारी थी जिसे ग्रीक पौराणिक कथाओं में पर्सियस द्वारा बचाया गया था। कभी कभी होमर में यह देवताओं के इथियोपियाई लोगों के साथ जाने और घूमने की बात करता था। उन्हें लोगों का एक बहुत ही खास समूह माना जाता था। ग्रीक साहित्य में मिस्र के दक्षिण में इथियोपियाई या अफ्रीकियों की सबसे आम उल्लेखित विशेषता उनकी काली त्वचा थी, और यह पुराने नियम में भी है। इसके अलावा आपके पास उनकी आवक्ष प्रतिमाएं, उनकी मूर्तियां भी हैं। लेखन में अन्यत्र यह अन्य विशेषताओं की बात करता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह मिस्र के दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकियों के बारे में बात हो रही है। लगभग 3000 ईसा पूर्व से न्यूबियन साम्राज्य मौजूद थे। इस विशेष साम्राज्य में वह मेरो साम्राज्य की बात करता है। खैर, मेरो मिस्र के दक्षिण में एक काला न्यूबियन साम्राज्य था जो अब सूडान है, और यह लगभग 750 ईसा पूर्व से था। इसके मुख्य शहर मेरो और नेपाटा थे। अब अंततः यह साम्राज्य उस समय गिर गया जब इसे एक सम के शक्तिशाली पूर्वी अफ्रीकी साम्राज्य द्वारा ग्रहण किया जा रहा था। लेकिन नूबिया में सुसमाचार फिर से फैल गया। 5वीं और 6ठी शताब्दी में यह ईसाई धर्म का एक प्रमुख गढ़ बन गया। वास्तव में यह लगभग 1000 वर्षों तक ईसाइयों का गढ़ बना रहा। अंततः क्योंकि वे अपना खुद का नहीं पा सके, उन्हें शिक्षा देने वाले पुजारी नहीं मिल सके क्योंकि अलेक्जेंड्रिया के कुलपति उन्हें नहीं छोड़ सकते थे और इथियोपिया उन्हें नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार उन्होंने उत्तर से आए आक्रमणकारियों के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन वे कई शताब्दियों तक उन्हें मार गिराने में सफल रहे। तो इस समय से अधिकांश इतिहास के लिए वास्तव में यह एक ईसाई साम्राज्य था। लेकिन इथियोपिया के बारे में मौखिक परंपरा के अलावा हमारे पास वास्तव में इस बारे में कुछ भी ठोस नहीं है कि इस अधिकारी के वापस जाने के बाद क्या हुआ। संभवतः उन्होंने अपना विश्वास साझा किया, लेकिन हमारे पास कोई विवरण नहीं है। कंदका या कैंडेस हम कभी कभी अंग्रेजी में कहते हैं। यूनानियों ने इसे शासक रानी मां की उपाधि के रूप में सोचा, तो ग्रीक उपयोग के अनुसार शायद यह सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि शासक रानी रही होगी। लेकिन अफ्रीकियों ने संभवतः इस उपाधि का अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया, न केवल उस रानी के लिए जो तब शासन करती थी जब कोई राजा नहीं था, बल्कि किसी भी प्रकार की रानी के लिए होता था। उनमें से एक शासक रानी मां ने वास्तव में ऑगस्टस को हराया। उसे पीछे हटना पड़ा और इन शक्तिशाली इथियोपियाई रानियों के बारे में कई अन्य प्राचीन रिपोर्टें हैं। यहूदी किंवदंती के अनुसार मूसा ने एक से विवाह किया था। इस काल में एक शासनादेश था। उसका नाम रानी नवादिमक था। हम नहीं जानते कि यह वही थी या नहीं, लेकिन वह उन रानियों में से एक थी जो वास्तव में नूबिया पर शासन कर रही थी या मेरो के साम्राज्य पर शासन कर रही थी। न्यूबियन कला में रानी को अनेक आभूषणों के साथ चित्रित किया गया है और उसके चौड़े घेरे को भी दर्शाया गया है, जिसका अर्थ है कि उसके पास बहुत सारा भोजन उपलब्ध था। इस संस्कृति में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। यह एक शक्तिशाली रानी थी। चाहे वह शासन कर रही थी या उसका विवाह उस पति से हुआ था जो शासन कर रहा था, हम इस अवधि में निश्चित रूप से नहीं जानते, क्योंकि पुरातत्वविदों द्वारा मेरो के शासकों की तारीखें अभी तक तय नहीं की गई हैं। लेकिन रानी का खजांची निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति होगा, क्योंकि रानी बहुत अमीर थी और यह एक बहुत अमीर राज्य था। पुरातत्वविदों को मेरो के खंडहरों में काफी धन मिला है जो नील नदी पर मिस्र से कहीं अधिक दक्षिण में था। मिस्र के साथ व्यापार संबंधों में ग्रीक का उपयोग किया जाएगा। मेरो के उत्तर के साथ कई व्यापारिक संबंध थे। यहीं से रोम को अनेक अफ्रीकी पदार्थ प्राप्त हुए। यदि वे मोर या कुछ भी चाहते थे तो यह आम तौर पर मेरो के माध्यम से आता था। इस काल तक मिस्र के शहरों की भाषा ग्रीक थी। बहुत से आम लोग अभी भी वही बोलते थे जिसे हम कॉप्टिक कहते हैं, लेकिन आधिकारिक चीजों के लिए ग्रीक का इस्तेमाल किया जाता होगा। नील नदी व्यापार के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि आप हवा के कारण नील नदी पर दक्षिण की ओर जा सकते थे या आप धारा के कारण नील पर उत्तर की ओर जा सकते थे। यह अधिकारी निस्संदेह ग्रीक बोलता था, क्योंकि वह राज्य के आर्थिक मुद्दों में शामिल था, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखें फिलिप एक हेलेनिस्ट है। ग्रीक उनकी भाषा है, इसलिए यह आम भाषा है जिसमें वे संवाद कर सकते हैं। यह शायद उस स्क्रॉल की भाषा भी है जिसे यह अधिकारी पढ़ रहा है, जिसे वह आसानी से हासिल कर सकता था। वह यरूशलेम में भी एक यूनानी पुस्तक प्राप्त कर सकता था, लेकिन संभवत इसे अलेक्जेंड्रिया में सबसे आसानी से प्राप्त किया जब वह उत्तर की ओर जा रहा था। श्लोक 28, वह एक रथ में है। केवल सबसे धनी लोगों के पास ही रथ होते थे। लोग कभी कभी महंगे रथों में बैठकर पढ़ते हैं। शायद वह खुद ही पढ़ रहा होगा। निस्संदेह वह पढ़ा लिखा था। वह निश्चित रूप से उस वर्ग का था जो शिक्षा का खर्च उठा सकता था, लेकिन हो सकता है कि उसके पास एक पाठक हो जो उसे पढ़ा रहा हो, और संभवतः यह ग्रीक में है। अन्यथा ऐसा कोई तरीका नहीं है कि फिलिप पहचान पाता कि वह कौन सा पाठ पढ़ रहा है। श्लोक 29 में आत्मा ने फिलिप्पुस से रथ के पास दौड़ने को कहा है। जाहिर तौर पर फिलिप अभी भी एक युवा व्यक्ति है। वह अच्छे स्वास्थ्य में है। कभी कभी हम पवित्र शास्त्र में युवाओं के उस सकारात्मक पहलू को देखते हैं। पीटर और जॉन, ठीक है, मेरे विचार में जॉन, लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। जॉन अध्याय 20 में पीटर और प्रिय शिष्य एक तरह की प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कब्र तक पहुंचने के लिए कौन सबसे तेज दौड़ सकता है। और प्रिय शिष्य पतरस से आगे निकल गया और उसे यह याद आया। लेकिन फिर पतरस यीशु के पास तैरकर आता है और अध्याय 21 में मछलियों का एक पूरा झुंड उठाकर अपनी भक्ति दिखाता है। खैर, फिलिप एक जवान आदमी था, शायद एक जवान आदमी था। जब हम उसे बाद में किताब में देखते हैं तो हम वास्तव में नहीं जानते कि उसकी उम्र क्या है, लेकिन उसकी चार कुंवारी बेटियां हैं। तो शायद कुंवारियों की सामान्य उम्र के बारे में हम जो जानते हैं उसे देखते हुए शायद वह इस समय एक जवान आदमी था। और इसलिए फिलिप रथ की ओर दौड़ता है। हो सकता है कि वह एलियाह की तरह अहाब के रथ से आगे न निकल सके, लेकिन वह रथ की ओर दौड़ता है। प्राचीन काल में चुपचाप पढ़ना बहुत दुर्लभ था, जैसा कि कुछ पुराने टिप्पणीकारों का कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी कभी होता था, लेकिन आमतौर पर लोग जोर से पढ़ते थे। अधिकांश भाग में उन्होंने चुपचाप पढ़ना एक अलग कौशल के रूप में विकसित नहीं किया था। वह रथ की ओर दौड़ता है और यहाँ वह व्यक्ति यशायाह से पढ़ रहा है। और वह आदमी कहता है, नबी किसकी बात कर रहा है, अपनी या किसी और की? खैर, यह एक दिव्य व्यवस्था है। आपके पास कभी कभी धर्म ग्रंथों में ऐसा होता है, जैसे उत्पत्ति 24 में, जहाँ इब्राहिम अपने नौकर को अपने घर से इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए भेजता है। और विवरण ऐसे तरीकों से आते हैं जो पुष्टिकरण को बिल्कुल स्पष्ट बनाते हैं, जो उत्पत्ति के संदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाइन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो उत्पत्ति 24 को बहुत विस्तार से वर्णित किया गया है और कहानी कम से कम दो बार बताई गई है, जैसे नौकर उस परिवार को विस्तार से बताता है जिसके पास वह आता है, कैसे प्रभु ने उसके लिए इसकी पुष्टि की। ठीक है, संभवतः आप में से अधिकांश, यदि आप बहुत लंबे समय से यीशु के अनुयायी रहे हैं, तो आपने इनमें से कुछ दिव्य व्यवस्थाओं का अनुभव किया होगा। वे होते हैं, ठीक है, मैं कहूंगा कि वे अक्सर होते हैं। मैंने उन्हें घटित होते देखा है। मैंने उन्हें अक्सर अनुभव किया है। लेकिन यह काफी नाटकीय है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि खुशखबरी इस सुदूर देश तक भी जा सके, जितना फिलिप जा सकता है उससे कहीं अधिक दूर तक फिलिप की भाषा क्षमताएं उसे ले जा सकती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण क्षण है। खैर, जो पाठ पढ़ा जा रहा है वह यशायाह 53 से है। अब यशायाह की पुस्तक में सेवक कौन है? खैर, कभी कभी यशायाह हमें यशायाह 42 और कुछ बाद के अंशों में बताता है, नौकर स्पष्ट रूप से इज़राइल है। इसलिए यदि कोई कहता है, नहीं, नौकर इज़राइल नहीं हो सकता, तो मुझे खेद है, लेकिन आप पाठ में स्पष्ट रूप से कही गई बातों का खंडन कर रहे हैं। यशायाह 49 में नौकर भी इज़राइल है, लेकिन 49.5 में नौकर इसराइल के बाकी हिस्सों से अलग दिखता है और इसराइल की ओर से पीड़ित होता है। और फिर अध्याय 53 श्लोक 1-3 में नौकर को इसराइल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। 53.4-12 में यह कहा गया है कि नौकर इसराइल के पापों को सहन करता है, भले ही यशायाह इसराइल को उसके पापों के लिए दंडित करने की बात कर रहा है। अध्याय 40 उसके पापों का दोगुना। और यशायाह 53 श्लोक 9 में कहा गया है, यह सेवक दोषी नहीं है। और 53.12, यह सेवक स्वेच्छा से कष्ट भोगता है। ऐसा नहीं लगता कि यह इसराइल का वर्णन कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह किसी ऐसे व्यक्ति का चित्रण कर रहा है जो इसराइल की ओर से कार्य करता है। इसराइल के भीतर एक व्यक्ति, एक धर्मी अवशेष जो इसराइल की ओर से कार्य करता है। और निस्संदेह यह नए नियम में यीशु पर लागू होता है, जिसे पीछे मुड़कर देखने पर हम देख सकते हैं कि वही है जिसने इसे पूरा किया। प्रेरितों के काम अध्याय 8 श्लोक 36 से 38 में मनुष्य बहुत प्रसन्न है। खैर, उसे यहूदी धर्म में परिवर्तित होने की अनुमति नहीं थी। वह एक किन्नर के रूप में ऐसा नहीं कर सका, लेकिन अब उसका स्वागत है। वह परिवर्तन कर सकता है। गाजा के निकट वाड़ियां थीं। वे एक ऐसी जगह पर आते हैं जहां वे कहते हैं कि यहां पानी है। मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोकता है? यहूदी बपतिस्मा में पूर्ण विसर्जन अपेक्षित था। इसलिए यदि कोई अन्य जाति यहूदी धर्म में परिवर्तित होना चाहता है तो उन्हें पानी में डुबो दिया जाएगा। वास्तव में आम तौर पर विसर्जन आज भी विसर्जन अभ्यास करने वाले चर्चों की तुलना में कहीं अधिक गहराई से किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को आम तौर पर पूरी तरह से नग्न होना पड़ता है। बाद में रब्बियों ने कहा कि यदि ऐसा है तो बीन की एक स्ट्रिंग आपके दांतों के बीच थी, इसने रूपांतरण को अमान्य कर दिया क्योंकि आप पूरी तरह से डूबे नहीं थे। अब मुझे नहीं लगता कि जॉन द बैप्टिस्ट लोगों को जॉर्डन नदी में उस स्थान पर नग्न कर विसर्जित कर रहा था जहां आपको पुरुष और महिलाएं एक साथ मिली हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत अधिक संभावना है, यह जानते हुए कि हम यहूदी धर्म के बारे में क्या जानते हैं जो नग्नता से घृणा करता है इत्यादि, फांसी के मामले को छोड़कर। और इसलिए यह नग्न बपतिस्मा भी नहीं हो सकता है। लेकिन किसी भी मामले में वहां एक वाड़ी है, वे ऐसा करने में सक्षम हैं। और ईश्वर भय के रूप में इथियोपियाई ने संभवतः बपतिस्मा की आवश्यकता को समझा। खैर, मेरा खतना नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम मैं इस अनुष्ठान से गुजर सकता हूँ। अब वैसे मैं इस मुद्दे पर जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि बाद में चर्चों को क्या करना चाहिए। मैं बस यह समझा रहा हूँ कि यह उस समय की पृष्ठभूमि है कि यह कैसे किया गया था। जब आप डिडाचे पहुँचते हैं तो आदर्श रूप से आपको बहते पानी में डुबो देना चाहिए। यदि आपके पास बहता पानी नहीं है तो आप शांत पानी का उपयोग करें। यह उस रास्ते पर चला जाता है जहां यदि आप नहीं डालते हैं तो आपको डालना पड़ सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह एक ऐसा कृत्य था जिसे धर्मांतरण के कृत्य के रूप में समझा गया था, और जिस भी अवधि को वे देख रहे हैं उसके आधार पर आपकी चर्च परंपरा इसे कैसे करती है। मैं सिर्फ इस बारे में बात कर रहा हूं कि अधिनियम की पुस्तक में यह क्या था। यह इस पर आधारित है कि यह इस अवधि में सामान्य रूप से कैसे किया जाता था। लेकिन प्रेरितों के काम अध्याय 8 और पद 39 में आत्मा फिलिप्पुस को पकड़ लेती है। इथियोपियाई अब उसे नहीं देखता है, लेकिन वह आनंदित होता हुआ अपने रास्ते पर चला जाता है जो अधिनियमों में आत्मा का एक संकेत है, जैसे अधिनियम 13 में अध्याय का अंत। आत्मा फिलिप को पकड़ लेती है। अब यह सोचा गया था कि एलियाह की तरह पुराने नियम में एक भविष्यवक्ता के साथ भी ऐसा हो सकता है। ओबद्याह ने कहा, ओह, शायद आप जानते हैं, जब आप मुझसे कह रहे थे कि अहाब को ले आओ तो मैं डर गया था। खैर, कोई भी आपको ढूंढ नहीं पाया है। तुम बहुत मायावी हो, प्रभु ने तुम्हें छिपा रखा है। मुझे बस डर है कि मैं जाकर अहाब को बता दूंगा और तुम यहां नहीं रहोगे। आत्मा तुम्हें छीन कर कहीं और रख देगी। या दूसरे में, जो दूसरे राजा अध्याय 2 और पद 16 में नहीं हुआ, भविष्यवक्ताओं के कुछ पुत्र एलीशा से कहते हैं, ठीक है, तुम्हें पता है, हम जानते थे कि तुम्हारा स्वामी आज तुमसे छीन लिया जाएगा। तो हो सकता है शायद प्रभु की आत्मा उसे किसी पहाड़ या किसी चीज पर ले गई हो। हमें उसकी तलाश करने की जरूरत है। यहेजकेल अध्याय 3 श्लोक 12 और 14 में आत्मा वास्तव में यहेजकेल को पकड़ लेती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह उसके शरीर में है या यह एक दूरदर्शी तरीके से है। आप जानते हैं, एक में उसे वास्तव में उसके बालों से उठाया गया है और आत्मा में ले जाया गया है, लेकिन यह भगवान के दर्शन में है। तो क्या यह शाब्दिक था या नहीं? लेकिन यहां यह स्पष्ट रूप से वास्तविक है और यह स्पष्ट रूप से भौतिक है। वह वास्तव में स्थानांतरित हो गया है। और मैंने वास्तव में ऐसे लोगों से बात की है जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है, बहुत बार नहीं। नए नियम में भी यह बहुत सामान्य नहीं है। हमारे पास यह यहां है, लेकिन और फिर प्रकाशित वाक्य में, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं, शायद रहस्योद्घाटन में एक दूरदर्शी तरीके से। तो और फिर पॉल कहते हैं, शरीर में या बाहर मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इसकी रिपोर्ट मिली है। और इंडोनेशिया में ऐसी खबरें हैं कि मंत्रालय की कुछ टीमें चल रही थीं और ऐसा कुछ था जिसमें एक सप्ताह लगना चाहिए था और इसमें उन्हें केवल एक दिन लगाया, ऐसा ही कुछ। यदि ईश्वर चाहे तो उसके पास उन चीजों को करने के तरीके हैं, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। अफ्रीकी अदालत का अधिकारी अपने रास्ते चला जाता है, हालांकि फिलिप की आत्मा उसे दूर ले जाती है और वह तटीय शहरों में जाना शुरू कर देता है। अजोतुस, जो अशदोद का प्राचीन पलिश्तीगढ़ था, अजोतस शहर का वर्तमान नाम था। यह गाजा से लगभग 25 मील उत्तर में या यरूशलेम से लगभग 35 मील पश्चिम में था। उन्होंने कैसरिया, कैसरिया मैरिटिमा आने तक इन शहरों में प्रचार किया, कैसरिया फिलिप्पी के विपरीत, जिसे स्ट्रैटोस टॉवर के नाम से जाना जाता था, और फिर हेरोदेस ने सीजर के सम्मान में इसका नाम बदल दिया। यदि ईश्वर चाहे तो उसके पास उन चीजों को करने के तरीके हैं, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। अफ्रीकी अदालत का अधिकारी अपने रास्ते चला जाता है, इसलिए और यहूदियों के साथ साथ अन्य लोगों को भी वहां बसाया गया। तो कैसरिया मैरिटिमा एजोटस से 50 मील उत्तर में था, तो गाजा से 70-75 मील उत्तर में, और यह उसी तटीय सड़क से दूर है। तो फिलिप इस समय मुख्य सड़क पर चल रहा है। अब यह फिलिप को यहीं छोड़ देता है। यह बाद में उसके पास वापस आने वाला है और वह अभी भी कैसरिया में रहेगा। तो आप जानते हैं, हमारे जीवन में अलग अलग मौसम होते हैं। फिलिप एक समय एक प्रचारक के रूप में भ्रमणशील थे। यहां फिलिप स्पष्ट रूप से कैसरिया में बसता है और मंत्रालय करता है। इस कथा के लिए सीजरिया बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहीं पर पीटर कुर्नेलियुस के साथ सुसमाचार साझा करने जा रहा है। खैर, फिलिप पहले से ही वहां जा चुका है, लेकिन जेरूसलम चर्च में एक नेता पीटर को ही भेजा गया है, क्योंकि जेरूसलम चर्च को भी कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। जेरूसलम की तुलना में कैसरिया अधिक बहुसांस्कृतिक था। जेरूसलम काफी हद तक अखंड यहूदी था। कैसरिया को यहूदियों और अन्य जातियों के बीच विभाजित किया गया था, और बहुत अधिक आदान प्रदान था और बहुत अधिक संदेह और अविश्वास भी था। लेकिन फिलिप वहीं बसने जा रहा है और संभवत वहीं मंत्रालय करेगा। लेकिन यहीं अध्याय 10 में पीटर कुर्नेलियुस से मिलने जा रहा है। लेकिन अध्याय 10 से पहले अध्याय 9 है, जहां शाऊल आस्तिक बन जाता है। और कुछ अध्यायों के लिए यह आगे और पीछे कटता जा रहा है, एक ओर पीटर और जेरूसलम चर्च और दूसरी ओर पॉल और जेंटाइल मिशन के बीच धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा है। कैसरिया संभवतः यहूदी रोमन युद्ध के कारण भी व्यापक रूप से जाना जाता था। जब युद्ध छिड़ गया तो यहूदियों और सीरियाई लोगों ने कैसरिया की सड़कों पर एक दूसरे का नरसंहार करना शुरू कर दिया। जोसेफस ने हमें बताया कि बहुत ही कम समय में सीरियाई लोगों ने बढ़त हासिल कर ली और शहर के लगभग 20,000 यहूदी निवासियों को मार डाला। तो यह एक भयानक बात थी। हालांकि बाद की चर्च परंपरा से हमें बताया गया कि फिलिप अब वहां नहीं था। फिलिप और उनकी चार बेटियां एशिया माइनर में प्रवास कर गई थीं और वहां जोहानाइन संबंधित चर्च का हिस्सा थीं। फिलिप यहां सामरियों, अन्य जातियों और यहां तक कि कैसरिया के साथ पीटर के अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। ल्यूक के पास संभवतः फिलिप से ये कहानियां हैं। कभी कभी हमारे पास इतिहास में बहुत सारे गुमनाम नायक होते हैं। फिलिप, हम इनमें से किसी भी चीज के बारे में नहीं जान पाते अगर ल्यूक के पास केवल जेरूसलम चर्च की कहानियों तक पहुंच होती। चर्च के इतिहास में हमारे पास बहुत से गुमनाम नायक हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के सामने हैं, ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे पीछे ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे पास अन्य लोग भी हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा जो मंत्रालय कर रहे हैं। आप कुछ प्रमुख प्रचारकों के बारे में सोचें, आप उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने उन्हें प्रभु तक पहुंचाया। वे लोग जो मुझे प्रभु तक ले गए, जिन्होंने मुझे सड़क पर सुसमाचार सुनाया जब मैं नास्तिक था, और मैंने उनके साथ 45 मिनट तक बहस की, और एक साल बाद तक उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं परिवर्तित हो गया हूँ। मैंने उनका पता लगाया और सुनिश्चित किया कि उन्हें पता चल जाए, और तब तक मैं 10 अन्य लोगों को प्रभु के पास ले जा चुका था। मैं उनके नाम जानता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनके बारे में नहीं सुना है। वास्तव में अधिकांश लोगों ने हम में से अधिकांश के बारे में नहीं सुना है, लेकिन हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। वे मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, जैसा कि ल्यूक अध्याय 10 में कहा गया है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान जानता है कि हम कौन हैं, और हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी हमेशा एक साथ रहेंगे। मुझे याद है एक बार मैं प्रार्थना स्थल की ओर जा रहा था। लोग वहां प्रार्थना कर रहे थे, वे वहां पूजा कर रहे थे, और मैं उन सभी चीजों में डूबा हुआ था जो मैं भगवान के लिए कर रहा था, और वे अच्छी चीजें थीं। जैसे ही मैं वहां गया, मुझे ऐसा लगा जैसे पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, ये सभी अच्छी चीजें हैं, यह मंत्रालय जो आप कर रहे हैं, यह मंत्रालय जो आप कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन आप यह नहीं होंगे, और आप नहीं होंगे वह बनो, लेकिन जो तुम हमेशा रहोगे वह मेरा बच्चा है, और वही हमारी पहचान का मूल है। चाहे लोग जानते हों कि हम कौन हैं या नहीं, फिलिप पीटर से पहले मिशन करता है, और फिलिप को पीटर जैसी बदनामी नहीं मिलती है। लेकिन परमेश्वर ने नई जमीन तोड़ने के लिए फिलिप का उपयोग किया, और परमेश्वर परमेश्वर की पुस्तक में जानता है, और यही मायने रखता है कि परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता है। हम पहले राज्य की तलाश करते हैं, और बाकी सब कुछ हमारे साथ जुड़ जाएगा, और अंत में यह राज्य ही है जो मायने रखता है, क्योंकि वही हमेशा के लिए है। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह अधिनियम 8 पर 17:11 है।